ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दूरदराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से निश्चित रूप से जीवन सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और तीव्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने विशेष रूप से गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बधाई दी। इन क्षेत्रों में कल 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। श्री फडणवीस ने कहा कि अधिक संख्या में माओवादियों के हथियार डालने और नए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने में उनकी विफलता को देखते हुए महाराष्ट्र जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले में वांगेतुरी गार्देवदा गट्टा अहेरी मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की 32 किलोमीटर लंबी गट्टा गार्देवदा वांगेतुरी सड़क का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के लिए करीब 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। श्री मोदी शहर में दो नगर पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये परियोजनाएं हैं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में सामान्य पूल आवासीय भवन टाइप 2 क्वार्टरों का निर्माण। प्रधानमंत्री द्वारका में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक को 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है और इसमें 3,000 वर्षों से अधिक के इतिहास का संकलन है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद कल रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। ये जहरीला कचरा सील बंद 12 कंटेनर में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में लगभग 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घावधि स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए थे। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपनी एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है। ये सुविधा 1 सितंबर 2024 से शुरू की गई थी। वाणिज्य दूतावास और अल अवीर के केंद्रों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नियमित वीजा प्राप्त करने के इच्छुक 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को व्यापक सहायता प्रदान की गई। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे नई दिल्ली में ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर की बैठक में भाग लेंगे। भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर सुदृढ़ हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई और ये 1,77,000 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2023 में सकल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भीषण ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 43 रेलगाड़ियां 5 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।